ॐ नमो भगवते गौरचंद्राय। ॐ नमो भगवते गौरचंद्राय। ॐ नमो भगवते गौरचंद्राय।
श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ मध्य लीला द्वितीय खंड अध्याय 7 से शुरू करेंगे।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मते सार्वभौमेर निस्तार करिल दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिल माघ मास शुक्ल पक्षे करिल सन्यास फाल्गुने आसिया कइल नीलाचले वास। फाल्गुनेर शेषे दोल यात्रा से देखिल प्रेमा बेशे ताहा बहु नृत्य गीत कइल। चैत्रे रही कइल सार्वभौम विमोचन बैशाखेरे प्रथमे दक्षिण जाइते हइल मन।
श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु और समस्त गौरभंत वृंद की जय हो। उनके कृपा से श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरित का दक्षिण गमन का प्रारंभ लीला को संक्षेप में कुछ आलोचना करेंगे। तो गोस्वामी कहते हैं, एई मते सार्वभौमर निस्तार करिल दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिल। महाप्रभु उसी को बताते हैं कि माघ मास शुक्ल पक्षे प्रभु करिला सन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु अब जानते हैं इस धराधाम में 48 साल अपने लीला किए, जिसमें फर्स्ट हाफ जो प्रथम 26 साल की आयु उन्होंने नवद्वीप में रहे और दूसरा 26 साल की आयु उन्होंने पुरी में बिताए। तो जब प्रथम हाफ जो 26 साल की आयु बिता तो महाप्रभु ने 26 साल में ही सन्यास लिए। जब उनके घर में उनके पिताजी नहीं थे, विधवा माता वृद्धा थी, बड़े भाई घर छोड़कर चले गए थे, बाकी सारे जो पुत्र पुत्री की देहांत हो चुका था उनके जगन्नाथ मिश्र के घर में केवल एक ही पुरुष व्यक्ति थे 26 साल उम्र की श्री चैतन्य महाप्रभु। और दो व्यक्ति और थे उनके घर में, एक तो उनके वृद्धा विधवा मां, दूसरा उनका 16 साल की उम्र की विष्णुप्रिया नामनी पत्नी। घर में किसी प्रकार की रोजगार के उपाय नहीं था, नो इनकम सोर्स। ब्राह्मण के परिवार घर में ब्राह्मणी स्त्री जाकर दूसरे के घर में काम नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती। इसी स्थिति में महाप्रभु संन्यास लिए, घर छोड़ के आधे रात में चले गए। महाप्रभु का वंदना करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणं। श्री चैतन्य महाप्रभु आने का एक मुख्य उद्देश्य है, वो सिखाना चाहते थे क्या ना, वैराग्य विद्या। वैराग्य विद्या से भक्ति योग हो पाता है, इसलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, आपने का भक्ति कराने के लिए वैराग्य विद्या सिखा रहे। स्वयं आचरण क्रिया, आपने आचरी प्रभु परिदे सिखाए, स्वयं आचरण किए कैसे संसार को छोड़ना होता है। कभी कोई सोच सकता है ऐसा परिस्थिति? जब ये बात को महाप्रभु ने सबसे पहले गदाधर पंडित को बताया, गदाधर मैं तो सोच रहा हूं मैं तो जाऊंगा संन्यास लेकर, बोले पागल क्या हो गया तेरा, हाँ तू भक्ति करना है घर में रहकर नहीं कर सकता, ये कौन सा धर्म है? तो धर्म पालन करने के लिए बोलते हैं कि तू भगवान है, भगवान हमेशा जुग जुग में आत्मधर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, धर्म स्थापना करने के लिए तुम आते हो ना? ना आता हूं। नहीं, कौन सा धर्म है? बूढ़ी विधवा मां रो रो कर मर जाएगी, शादी क्यों कर रहा था? 16 साल की उम्र के लड़के कुछ नहीं, उनको छोड़ो, ये कौन सा धर्म है भाई? उनको छोड़कर किसी हालत में कोई रोजगार नहीं, कैसे खाएंगे पिएंगे रहेंगे, उनको छोड़कर चला जाना, ये कोई धर्म है? और तू धर्म स्थापना करने के लिए आया? देखिए, हम लोग संसारी व्यक्ति अपने बुद्धि अपने तर्क से जो समझ रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है, बिल्कुल कुछ और है। इसलिए बाबा जी महाराज गोरखनाथ दास जी कहते हैं कि साधारण जनमत करिया आश्रय हरि भक्तिर परिमाण नापा नहीं जाए। जनरल मास पब्लिक का ओपिनियन के ऊपर बेस करके भक्ति को आप नाप नहीं सकते कि भक्ति बड़े है कि नहीं, ना। समय का भाव है, नहीं तो उसका उदाहरण देता कैसे नहीं करते, चैतन्य लीला में ही है इस बात। तो चलो आगे कभी बताएंगे। तो अभी महाप्रभु ने घर त्यागे, जैसे भी हो ईश्वर है स्वतंत्र, किसी का बस में तो है नहीं, कोई कितने समझावे कोई कितने करे, वो अपने इच्छा स्वतंत्र इच्छा उनके घर छोड़ के चले गए। रात के चतुर्थ प्रहर में तृतीय प्रहर में निकल करके गंगा में कूद करके तैर करके गीले कपड़े में भाग करके 40 किलोमीटर चले गए कंटक ग्राम, जाके संन्यास ले लिया जबरदस्ती। वो भी उनके गुरु जी से संन्यास लेना चाह रहे थे, कैसे भारतीय हो, बोले आप इतने युवक उम्र है, क्या आपका घर ठिकाना, आप परमिशन लेकर आओ, आपके माता पिता से शादी किया ना, अब लेटर लेकर आओ, जैसे आजकल हम स्कन में करते ना वो लेकर। महाप्रभु बोले ठीक है, आप अगर इसे बोलते मैं जाऊं, वो देंगे कि नहीं परमिशन, ठीक है। दुखी होकर जब निकलने लगे, ये जब ईश्वर है ना ऐसे माया रचे, वो स्वयं बोला नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे कैंडिडेट फिर कहां मिलेगा, फिर तो शायद नहीं आएगा, अब तो ठीक है कोई बात नहीं, आप जब आया है तो मैं दे दूंगा। भगवान उनसे दिखा लेंगे, वो तो मायावादी संप्रदायक है, तो बोले मैं तुझे क्या दिखा दूं, क्या करूं, तू मेरे से क्यों लेना चाहता है, आपके इसे रूप जोवन इसे आपका गुण है। तो बोले मैं कल रात को सोया था, एक स्वप्न देखा, कोई देव पुरुष आकर मुझे एक मंत्र बताया, बोला कि संन्यास मंत्र ही है क्या, ना बताओ बताओ क्या, ना मैं इसे थोड़ी मंत्र बताऊं, आप चुप बैठो कान दिखाओ। तो जो इससे दिखा लेंगे जो गुरु जी है, वो उनके सामने नेल डाउन हो करके घुटना टेक करके उनके सामने इस कान को दिखाए, वो हाथ देकर चुप चुप करके उनके कान में बोले, शिष्य बोल रहा है गुरु को पहले, छल है कि मैं स्वप्न में ऐसा सुना था, छल क्या है, वही है उनके सबसे पहले कर्ण मंत्र दिखा उनको दिए, नहीं तो किसे दिखा लेंगे, वही स्वयं दिए शिष्य को, गुरु को पहले शिष्य बनाए फिर जो दिए वो इनसे लिए, फिर उनसे लिए वो जो सुना बोला वाह यही है पक्का, तो इसी को दिया, और उनसे दीक्षा ले करके उन्हीं को पक्के भक्त बना दिए। जो शंकर संप्रदाय के भारतीय सन्यासी थे, वो दीक्षा देने के बाद उदंड नृत्य 2.5 दिन तक करने लगे, भूल गए अपने सोहंग भाव, भूल गए, कीर्तन करते रहे, नृत्य कीर्तन और रोने लगे उनके सारे, और बाकी जो फलेवर को लेकर के इतने लंबा समय तक रोना धोना कितने से करने लगे, भूल गए सर, ये है भगवान। जो भी हो, संन्यास लेने के बाद उन्होंने आए और चले गए पुरी, माँ के आदेश से पुरी में जाकर रहे। पुरी में आते ही सबसे पहले सार्वभौम पंडित के ऊपर आक्रमण किए, मतलब आक्रमण ऐसे कुछ नहीं है, उन्हीं का जो तरीका है प्रीचिंग टेक्निक, आपने आपको ऐसे सेंसलेस कर डाले, मंदिर के अंदर घुस गए, चौकीदार लोग को पिटने आए, ये क्या घुस गया, किसी झका देकर सबको जबरदस्ती आगे जाके गिर गया, क्या कर गया। तो पंडित सार्वभौम मंदिर में दौड़ कर आए, वो विद्वान पंडित थे, शास्त्र ज्ञान है, वो देखे कि ये जो शरीर में लक्षण दिखाई पड़ रहा है ये साक्षात सत्य के विकार के लक्षण है। और मैं जानता हूं भक्ति साहित्य में ये कहा गया है कि ये जो आठ सात्विक विकार होता है किसी मनुष्य में, किसी नर शरीर में, मतलब ये जो मृत्यु लोक के कोई शरीर में ये संभव हो ही नहीं सकता। इस मनुष्य लोक में किसी शरीर में अगर एक दो तीन तक हो गया तो अतिमानव स्तर में चला जाएगा। तीन लक्षण में अतिमानव स्तर हो ही नहीं सकता उससे ज्यादा। अतिमानव लोग तीन चार पांच तक जाएंगे, उसके बाद में तो केवल दिव्य पुरुष ही कर सकते हैं, महाभक्त भगवत पार्षद उनके ऊपर में ज्यादा कृपा। बाकी आठ को आठ लक्षण वो तो पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति के अलग उसका अंग किसी में हो ही नहीं सकता। वो कौन है? श्री राधिका। उन्हीं के अलावा कोई दूसरा व्यक्तित्व तो है ही नहीं जिसमें आठ को आठ सात्विक विकार दिखा दे। तो उसी को वो जानते थे, लेकिन ये तो पुरुष है सन्यासी, उनके अंदर आठ को आठ, क्या पता कि वही राधा रानी है। वो तो बिल्कुल आंख बाहर निकल पड़ा, सोच रहे थे ये क्या है, साक्षात चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, सब सिम्टम्स। तो रोके चौकीदार, बोले रोको रोको ना, भोग के समय बोले उठा ले चला हमारे घर में। तो अपने घर में ले आए, 9 घंटा तक कोमा में रहे। 9 घंटे के बाद उठे तो उठे, कोई हम लोग को कोमा में रहते हैं तो उठे तो जैसे की हालत में उठेंगे, जो उठे एक सेकंड भी नहीं लगा वो छात को पकड़े ऐसे जंप मारे, कीर्तन करने लगे, नाच कर, वो सारों हो देख रहे ये क्या है। 9 घंटे तक डेड बॉडी चचा पड़ा रहा, उठा तो एक सेकंड में जंप कर रहा है, इतना कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा था समझ। गोपीनाथ आचार्य सुना बोला चलो सन्यासी मैं गृहस्थ हूं, हमारे घर में आए हैं तो भोजन तो नहीं किए, पड़े रहे सुबह से शाम तक। तो बोला मैं भोजन को नहा कर लो, स्नान टन करके आता हूँ, भोजन रेडी करो, स्नान करके आए तो उनको प्रसाद मंगा कर भोजन कराया। तो आकर के भोजन करने के बाद प्रणाम करने लगा, बोला सन्यासी को तो प्रणाम नहीं किया हूँ, आकर प्रणाम किया। जानते हैं बहुत बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, नमो नारायण कह करके प्रणाम किया। अब महाप्रभु की पहचान नहीं पाता था उन्होंने, क्योंकि महाप्रभु जो सन्यास लिए शिखा सूत्र त्याग दिए थे, ना उनका जनेऊ था, ना तिलक था, ना कंठी था, ना शिखा था, कुछ नहीं था। तो इसलिए पंडित सार्वभौम भी फंस गया कि पहचान नहीं पा रही कौन संप्रदाय का है, नहीं पता कर पा रहा था। सन्यासी तो है, फिर कौन सा संप्रदाय, शंकरी है कि वैष्णव है, कुछ भी नहीं, ना ऐसा तिलक, ना ऐसा तिलक, कुछ भी नहीं, तिलक भी लिखा कुछ भी, तिलक नहीं, कंठी नहीं, शिखा नहीं, सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं था। बोले यही तो देखे जाता है कि भाई शंकरी होंगे, लेकिन ये तिलक भी नहीं है, ना इधर का ना उधर का। तो आश्चर्यचकित हो रहे थे उन्हें, जब उन्होंने नमो नारायण करके प्रणाम किए तब उनको सन्यासी के रूप में आशीर्वचन दे, कृष्णे मति रस्तु। सार्वभौम भड़क गए, बोले अरे ये तो फिर हमारे दल के नहीं होंगे, ये बात कृष्ण शब्द तो हमारे जितने गोष्ठी किसके मुख से आ ही नहीं सकता ना, बड़े मुश्किल से भगवान का नाम कहेंगे परमात्मा कह डालेंगे, बाकी कृष्ण तो कभी नहीं कह सकते। कृष्ण मति रस्तु कह रहा तो मतलब वैष्णव सन्यासी तो है। तो फिर पता लगाए उनका, पता लगा कर पता लगाया कि अपने गांव वाले निकले हो, उनके संबंधी उनके गांव वाले निकले तो बड़े खुश हो गए। जो भी हो तो बोले कि इतने कम उम्र में इतने सुंदर रूप है, सन्यास ले लिया कैसे धर्म मेंटेन करेगा, बड़ा दिक्कत है, गड़बड़ है। तो उनको चलो मैं कितने सन्यासी को ट्रेनिंग दिया, उनको भी ट्रेनिंग देकर सिखा करके उनको ब्रह्मनिष्ठ करा दूंगा। तो मन में विचार करके तो उनको सिखाने के लिए वेदांत पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते गुरु ही चेले बन गए। एक हफ्ता के अंदर ऐसे ही ऑपरेशन किए भगवान ने, बैठे बैठे आज स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस से ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह बैठ करके ऐसे ऑपरेशन कर दिया उनको देखते देखते कि वो भी कोलाप्स हो गया, 100% कोलाप्स। उठ करके थर 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 काम करके प्रणाम किया, बोला कौन है आप बताए, कौन है कौन है। तब महाप्रभु बोले कौन है, बहुत पूछता है, बड़ा पंडित ही दिखा दिए, षडभुज रूप दिखाए उनको, वही राम वही कृष्ण वही चैतन्य। अरे बाप रे बाप, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, आप आद मस्तक देखते गया देखते गया, कांपते कांपते थर थर कंठ में 100 श्लोक वायु वेग में रचना किया, उनकी स्तुति क्या हुई। इसी श्लोक में आता है वैराग्य विद्या ने जो भक्ति जो तो सर्वों को ऐसे विमोचन के उद्धार किए कि सर्वों साक्षात बोलते हैं कि मैं तो लौह पिंड था, तर्क जुक्ति में न्याय मीमांसा में मेरे पास कोई बड़े बड़े भटक नहीं सकते थे, लेकिन आप क्या क्या चुपचाप बैठे बैठे ऐसे ही मेल्ट कर दिया, ऐसे मेल्ट किया लोहा को, इतने कठिन लोहा को तो ब्लास्ट फर्नेस भी मेल्ट नहीं कर पाता, तो कितने प्रचंड प्रताप होगा आपके पास। देखने में तो बड़े ठंडी ठंडी लग रहा है, अंदर में कितने हीट कितने एनर्जी है आपके पास, मुझे मेल्ट ही कर दे, पानी पानी कर दिया। ऐसे सर्वों को उद्धार किए ओनली इन वन वीक। तो उसके बाद में चैत्र मास रहे, रह करके वैशाख के प्रथम में बोले मैं दक्षिण जाऊंगा। तो उनके जब शांतिपुर से मायापुर चले थे, उनके साथ वो चार आए थे लोग, है ना, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर, आनंद आनंद है सारे सारे लेकर आए थे। तो वो चारों उनके साथ रहते थे, पुरी में भी साथ में रहे। तो जब विचार किए कि मैं दक्षिण जाऊंगा, तो वो तो उनके साथ में आए थे, नित्य पार्षद है उनके, तो डिसाइड किए महाप्रभु के लिए मैं जाऊंगा लेकिन अकेला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ में लोग जो मेरे भरोसे में आए मेरे साथ में रुक रहे हैं, उनको क्या करूं। तब यही देखिए इसमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होता है, हाउ टू कल्टिवेट रिलेशनशिप एमंग द डिवोटीज। भक्तों के बीच में जो संपर्क हमारा बराबर गड़बड़ हो जाता है, बहुत रूठ जाते हैं, बातचीत बंद हो जाता है, क्या से क्या बन जाता है, ये बड़ा सीख लेना चाहिए कैसे प्रैक्टिकल व्यवहार किया जाए भक्तों के साथ में, है ना। नहीं बहुत अपने भक्त हैं निजी भक्त, और उनसे कुछ ऐसे बात आप करना चाहेंगे कि जिसको सुन करके रूठ जाएगा, लेकिन कैसे करना कहा जाए, क्या उपाय है, बात वही कहेंगे लेकिन ऐसे कहेंगे कि वो रोते रोते थक जाएगा लेकिन आपसे बिछुड़ नहीं जाएगा। ये सब भगवान शिक्षा देते हैं अपने व्यवहार में। अब देखिए बोलते हैं, जब उनका दक्षिण जाने के लिए मन किया तो सबसे पहले बुलाया सबको, अपने साथ चार और थे ना फ्रेंड, तो उनको भी बताया जाएंगे, डिसाइड कर लिया कि मुझे अकेला जाना है। जाने से पहले सारे उनका फ्रेंड को, उनके जो मित्र हैं मित्र वर्ग को बुलाए, निज गण आनि कहे विनय करिया, आलिंगन करी सवाय श्री हस्तधरिया। क्या तरीका, देखिए सारे अपने जो बंधु है वो जानते हैं कि ये सबसे सीनियर मोस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है, बाकी उनके अधीनस्थ हैं सारे, लेकिन उनको सबको बुलाया। बुला करके कैसे बुलाया, बुला करके बैठाया, सबका हाथ अपने हाथ में ले लिया, एक एक करके इंडिविजुअली उनके हाथ को दो हाथ में पकड़ करके बड़े मिनित करके विनय हो करके बहुत हम्बल भाव में करने लगे, आलिंगन कर डाले, हाथ पकड़ करके विनती करके बोलने लगे। क्या बोलने लगे, ना तुमा सवा जानी आमी प्राणाधिक करी। देखिए क्या बाण मारते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको तो मैं मेरे प्राण से भी अधिक मानता हूं, तू मेरा इतने निकट संपर्कीय है कि मैं आपको मेरे प्राण से भी ज्यादा मानता। तुमा सवा जानी आमी प्राणाधिक करी, प्राण छड़ा जाए तो मां सवा छाड़ी ते न पारी। अगर कभी ऐसे सिचुएशन हो मेरा प्राण छोड़ जाए लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रहा ना कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करेंगे तो कौन नहीं पटेगा बताओ। हाथ पकड़ करके गले में लगा करके बड़े विनय करके, आहा आप मुझे कितने निकटतम है, इतने मेरा घनिष्ठ है कि प्राण से भी ज्यादा। अरे प्राण क्या, प्राण तो कभी निकल जाए फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, प्राण निकल के डेड बॉडी पकड़ेगा। मतलब कहने का क्या भाव है उनका, वो समझे ना समझे तो पटी तो जाएंगे। तो ऐसे बात किए अब छोड़कर जाएंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं इसलिए बोलते प्राण छोड़ जाए लेकिन आपको छोड़ नहीं सकता हूं, मगर अभी छोड़ूंगा इसलिए बोल रहे हैं। तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कृत्य कैले, यहां आनी मोरे जगन्नाथ दिखाईले। आप मेरा वास्तविक बंधु है, बंधु के तरह मैं तो सन्यासी पागल होकर घूम रहा था, मुझे रखण बिखण करके लेकर आए पुरी, जगन्नाथ दर्शन चाहता था, मैं जगन्नाथ के दर्शन कराए वहां पुरी में रखाए, आप वास्तविक आपने मेरा इतने उपकार किए लेकिन मैं अभी एबे सवा स्थाने मुई माग एक दाने सबे मिली आज्ञा देह जाई बहुत दक्षिणे। अब हम सभी का पास में एक डोनेशन भिक्षा करता हूं, प्लीज एक दान मुझे दीजिए। आप क्या मांग रहे हैं हमको, हम तो बिना मांगे इसे ऑर्डर करो हम दे दे। नहीं नहीं नहीं, मांग रहा हूं, एक दान चाहता हूं आपसे, हाथ पता करके आप कृपा करके सभी ने मिल करके मुझे दे दीजिए। सब एक दूसरे मुख देखे, क्या हमसे मांग रहा है भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्या हमसे मांग रहा है दान। तो क्या दान मांगा, बोलते कि मैं दक्षिण जाना चाहता हूं, मुझे परमिशन दे दीजिए। तो दक्षिण जाना चाहते परमिशन, हम आपके साथ तो जाएंगे, तो जहां जहां जाएगा मैं, हम आपके अंग है, शरीर जाएगा अंग नहीं जाएगा ऐसे होता है। आप चलेंगे, आप हाथ को छोड़कर चलेंगे, पैर को छोड़कर चलेंगे, ऐसे हो सकता क्या, हाथ पैर क्या, हम तो अपना बेडिंग बिस्तरा भी लेकर चलते साथ में, है ना। नहीं तो बोले हम तो आपके अंश है, आपको छोड़कर तो होगा नहीं, आप चलेंगे दक्षिण कहां, जहां मर्जी जाओ, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो आपके साथ चले चलेंगे, आप जहां जाओ। हमको कोई पूछता है फिर हमसे दान क्यों मांग रहा है, जब हमारा संपर्क कैसे बताया, प्राण और शरीर, शरीर से प्राण कभी अलग होता है, आप शरीर जाना चाहेगा अभी वृंदावन, प्राण कोई छोड़कर जाएगा दिल्ली में, ऐसा होता है क्या, कभी हो तो नहीं सकता। वही प्रमाण कर दिया कि आप मेरे प्राण है, तो प्राण से भी ज्यादा है। अब बोलता है कि आप यहां रहो मैं जा रहा हूं, इमीडिएट एक मिनट में बदल गया। ये कैसा बात है, तुम स्वयं बोल रहे हो, बोल रहे हैं कि हमारा आपके बीच में जो संपर्क कैसा है, शरीर और प्राण, शरीर प्राण तो कभी अलग हो ही नहीं सकता है। वो ये बताकर क्या बोलता है कि प्लीज आप यही रहिए, मुझे परमिशन दे, मैं जा रहा हूं, मतलब प्राण सब यही रहे, मैं शरीर जाऊंगा, ये कैसे संभव है। तो सभी ने आश्चर्य होकर बोले ये कोई दान है भाई, ये तो असंभव है, हम आपसे अलग हो कैसे सकते हैं, आप हमको छोड़कर जाएंगे कैसे, हम किसके भरोसे आए थे घर द्वार छोड़ करके, आपके भरोसे तो आए थे। सभी ने जो चारों आए हैं, संपूर्ण परिवार गृह भक्ति स्वजन परिजन सब छोड़ करके कुछ भी नहीं लाए, एक सदाम उनके पीछे पीछे भाग कर आए हैं। अब यहां बैठा करके बड़े नेहुरा करके हाथ जोड़ के बोलते आप ही रहो, मैं अकेला जा रहा हूं, ये कौन सा बात है, ये तो बिल्कुल गलत व्यवहार है। जब मन में सोचे शास्त्र कि इसे क्यों कह रहे हैं हमको, तब उनके कज बता रहे हैं कि क्यों कह रहा हूं, विश्व रूप उद्देश्य अवश्य आमी जावो एकाकी जाइब आमी कार संगे ना लइब। बोले देखो ये मेरा प्राइवेट मामला है ना, पर्सनल बात है, इसलिए सबको क्यों लेकर जाऊंगा, क्या पर्सनल, मेरा विश्वरूप मेरा भाई है, आप जानते हैं घर छोड़कर विश्वरूप चला गया था, घर से भाग गया था, अब मुझे पता चला वो दक्षिण में है, मुझे पता चला, तो इसलिए मैं मेरा भाई से मिलने जा रहा हूं, मैं मेरा बड़ा भाई से मिलने जा रहा हूं, तो आप लोग संबंधों को क्यों लेकर जाऊंगा, मेरा घर का बात है, आप मेरा मित्र है, मित्र मित्र की तरह घर के जाके प्राइवेट पर्सनल मामला में थोड़ी अभ्यस्त कभी करेंगे, इसलिए आप यहां रहिए, अब मेरा भाई से मिलने का मुझे आ जाऊंगा, तो भाई से मिलना है इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं लूंगा, और एकाकी जाइब का है संग ना लाइब, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। सेतु बंद है ते आमी नासी जावत नीला चले तुम्हें सब रही बेतावत, ऑर्डर भी देता है क्या कि देखो मैं एकाकी जाऊंगा, जाऊंगा ज्यादा दूर नहीं है, सेतु बंध तक मतलब रामेश्वर तक जाऊंगा, रामेश्वर पुरी से बोलते हैं कि रामेश्वर पुरी से रामेश्वर कितना दूर मालूम है ना, अंदाज कोई बोला सकते कितना किलोमीटर होगा, हाँ मिनिमम 2000 किलोमीटर तो होगा, 2000 किलोमीटर मिनिमम, तो इसको बोलते हैं मैं बस जाकर आता हूं, कैसे जाएगा, प्लेन कार गाड़ी ट्रेन पर नहीं था, कैसे जाएंगे, पैदल में जाएंगे, बस सेतु बंध तक जाकर आऊंगा, तो वहीं रुके मैं गया और आया, और इसमें क्या बात, वे लोग के मुर्ख थोड़ी है, तो सत्य बंध तक जाएगा आएगा कितने दिन लगेगा मिनिमम, कोई कॉमन आदमी समझ सकता है, तो चल कर जाएगा 2000 किलोमीटर चल के जाएगा, अब एक दिन में कितना चल सकता है तुम्हें, कोई हमारे जैसे सुस्त सबल व्यक्ति हो, कुछ समन नहीं खाली ठुंका ऐसे चले, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा आगरा करते हैं, कुछ साथ में नहीं लेते हैं, फटाफट चलते हैं, फिर भी 21 किलोमीटर परिक्रमा के लिए कितना घंटा लगता है, 5-6 घंटा 6 घंटा, तो कितना स्पीड एक घंटे में कितना चल पड़ा, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर, चलो 5-6 ही पकड़ लो, तो 2000 किलोमीटर कितने दिन लगेगा, 400 दिन जाना और 400 दिन आना, ऐसा थे कि कंटिन्यूअस चलते रहे, कोई रुकेंगे नहीं, खाएंगे नहीं क्या, वो भी तो भाई है। और सबको मिला करके एक कंटिन्यूअस जाए और कंटिन्यूअस आए नॉन स्टॉप, तो 800 दिन तो चाहिए। 800 दिन मतलब कितने दिन, कितने साल हो जाएगा, दो साल से ऊपर जब कंटिन्यूअस जाए और रुक रुक कर जाए तो आप समझ लीजिए। अब बोलता है कि आप यहां रुके, मैं गया और आया, कैसे बात कहना है, देखिए कोई ऐसे मेजर बात कहना है तो पहले ही इतने नम्र हो जाओ, रो पड़ो तो मानेगा नहीं आप। क्या तरीका है उनका। विश्व रूप सिद्धि प्राप्ति जाने न सकल, दक्षिण देशे उधारित करे न ऐ छल। अब बाकी ये जो उनके साथी में थे नित्यानंद जी, उनको यह पता नहीं था, वो तो उनके बचपन से घर द्वार जाते ही नहीं, सब छोड़ छाड़ के उनके पीछे रहते थे, उनके साथ रहते थे, नवदीप में उनके साथ घूमता खाना पीना रहने उनके पड़ते थे। उनके पता नहीं आपके भी भाई का क्या खबर, तुझे पता है उनको पता नहीं क्या, उनको ठीक पता है, क्या पता नहीं कि विश्वरूप तो शरीर रख चुके हैं, उनका प्राप्ति हो चुका है, ये सबको पता है, उनको ही पता है, उनके दोस्तों को पता है। बोले विश्वरूप को भेंट करने जाएगा, नहीं विश्वरूप है, विश्वरूप तो जा चुके हैं, तुम किसे भेंट करने जाएगा, या हमको बहाना क्यों बता रहे, हमको क्या पता नहीं क्या, तुझे साउथ इंडिया जाना है तो किस में जाना है, हमको झूठ क्यों बोल रहा है, देखो झूठ भी बोल रहे थे। मतलब कभी आपको काम निकालना हो, झूठ सच मिला करके ऐसे ही हम्बुल होकर के रो रो कर बात करना, ऐसे काम निकल जाए। हाँ कई जगह में भगवान ऐसा किए, जब प्रकाश हमसे बात किए ए जा करके चुपचाप बैठ कर जब पैर धोते थे, वो हजारों सन्यासी बैठे हुए थे, बड़े बड़े आसन पे चांदी सोने के आसन बैठे हुए थे मंच में, उनको इन्वाइट किए थे, एक सन्यासी के उन्हीं के संप्रदाय के, और जाकर के जहां सन्यासी लोग जाते ना मंच पर, तो पहले उनका पद धो तो हो रहा है, पैर धोकर फिर जाएंगे मंच पर बैठ, जहां पैर धोते जाके वहीं बैठ गए चुपचाप ऐसे करके, नीचे कोई आसन नहीं, किसने गिल्ला मिट्टी पर बैठ गए, बैठ करके और टेम्परेचर बढ़ा दिए, भले बढ़ा दिए, हाँ ईश्वर तो है ना, आपके प्रकाश ऐसे बढ़ा दिए और सारे को सारे देख रहे हैं, कोई सूर्य आ गया ना क्या, भगवान सूर्य यहीं प्रकट हो गए क्या, इतने तेज, बाप रे बाप, शंख आंख चलबल होने लगा, इतने तेज निकल रहा था, बिल्कुल भले बढ़ा दिए यहीं बैठे बैठे, लाइट तेज कर दिए तो वो तो और दो मिनट भी नहीं बैठ पाए, सारे जो हेड है उनका शंख प्रकाश ने दौड़ कर, हाँ 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 श्रीपाद यहीं क्यों बैठ गए, चलिए चलिए आप सन्यासी है हमारे साथ बैठे, उठ करके उनको आकर हाथ पकड़ कर पैर पकड़ उठा कर लेकर गए, नहीं 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 चलिए हमारे साथ बैठे, कि समझ गए कि साधारण सन्यास नहीं, इतने पावर उनका, वो यहीं आकर बैठ गए, इतने हम्बुल कर दिए आपने आप। तो प्रकाशानंद बोला भाई देखो आप हमारा ही गोष्ठी के हैं, हमारा संप्रदाय के सन्यास है, आप ये क्यों, हम सोच रहे हैं नौटंकी क्यों कर रहे हैं, नौटंकीबाजी, हाथ उठाकर नाच रहा है गा रहा है, व्हाट इज दिस, भाई तू सन्यासी हो, ब्रह्म चिंतन करो, ब्रह्मास्मि वेद पाठ निर्ध्यासन करो, चिंतन करो, हम जैसे करते हैं बैठ करके, हमारा शान है प्रतिष्ठा है, ये क्या करके ड्रामा, रास्ते में नाच रहा है गा रहा है रो रहा है, व्हाट इज दिस, सन्यासी हो तो महाप्रभु हाथ जोड़कर बोलते हैं महाराज जी आप जो कहे बिल्कुल सही है, सन्यासी तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं मूर्ख हूं ना, मूर्ख हूं, ऐसे पढ़ना लिखना आता ही नहीं मुझे, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था ना, पढ़ना लिखना आता ही नहीं था मुझे, और उनका पहले जमाने में घर का नाम क्या था मालूम है ना, निमाई पंडित, और वही बोल रहे हैं कि मैं महामूर्ख हूं, पढ़ा लिखा नहीं जानता, सरासर झूठ नहीं बोल रहे, सरासर झूठ बोल रहे। अरे तू इतना मूर्ख है, तुझे सन्यास कौन दिया फिर, आजकल तो इस्कन में बिना भक्ति शास्त्र में नहीं देंगे तुझे, तुझे कौन सन्यास दे दिया, हाँ तो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे जाकर के नेहुरा हुआ जैसे आपके साथ में विनती करूं, ऐसे विनती किया, गुरु मुरे मूर्ख देखी करीला शासन, वो समझ गए कि महामूर्ख हूं, तो गुस्सा करके मुझे बोले भी चलो मूर्ख जाओ, तुझे मैं दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन तू तो वेद शास्त्र तुझे पढ़ ही नहीं सकता, चलो मैं तुझे मंत्र दे रहा हूं, उसी कीर्तन करते रहो जा। तो मुझे एक मंत्र दे दिए और मैं बड़े कष्ट से उसको कंठ कर लिया, याद कर ले, याद करके उसी को गा रहा, मतलब तू गा रहा है मंत्र दिया, मंत्र बैठ करके आपको जब करना चाहिए, तू ये नाच गा करके सड़क में क्यों नाच रहा है, इसे पागलपन, बोले ये भी मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, ना तो पता नहीं तो गुरु जी की जगह पूछा नहीं कि वे मंत्र दिए मैं क्या करना, कैसे जपने का तरीका क्या करूं, बोले जाके पूछा था। बोले जब मैंने मंत्र गुरु जी से लिया और जाकर के उसको किया अनुष्ठान जब किया तो पता नहीं मैं तो पागल हो गया, ऐसे नाचने लगा रोने लगा भागने लगा नगर में इधर उधर, न फिर उसे ट्रीटमेंट नहीं किया न मैं गया था, जाकर गुरु जी से पूछा, बोला किवा मंत्र दिल गोसाई किवा तारा बल जपिते जपिते मोरे करीला पागल, क्या मंत्र दे दिया मुझे पागल कर दिया, तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं दिया मुझे। गुरु जी बोले क्या कैसे पागल होता है, ना जैसे जप करता हूं आंख से पानी निकलता है, शरीर में पुलक हो जाता है, कंप आ जाता है, गला गदगद हो जाता है, चौक हो जाता है, तब तो फिर हाथ उठा करके नाचता हूं कूदता हूं, बाह्य स्मृति भूल जाता हूं, मैंने क्या करता हूं ऐसे करता हूं। तो गुरु जी ने हाथ जोड़कर बोले निमाय चैतन्य मंत्र का सिद्धि तो आप कर लिया। हां मैं मंत्र से उद्या में जानता हूं कि मंत्र का सिद्धावस्था यही है परफेक्शन स्टेज आपकी हो गया, तो पागल पर नहीं यही तो सिद्धि स्थिति है सिद्धावस्था है, मैं क्या करूं गुरु जी ने ऐसा बोल दिया तो मैं जब कर रहा हूं ऐसे हो रहा। सब आश्चर्य होकर गंभीर से देखने लगे, बोले और कुछ नहीं गुरु जी बोला था, कुछ शिक्षा नहीं दी ना, शिक्षा क्या पढ़ाए कुछ बोले, बहुत शिक्षा दिए, एक श्लोक बड़े मुश्किल से मेरे और एक एक्स्ट्रा याद किया हूं, पता नहीं को वेद शास्त्र में है कि नहीं, अर्थ तो मुझे पता ही नहीं अनपढ़ हूं, आप लोग बड़े बड़े विद्वान हैं आप बता सकते हैं कोई वेद शास्त्र में है उसका अर्थ क्या, आप भी बता सकते हैं ना, बोलो कौन सा श्लोक ना, देखो मेरे भूल भाल हो जाए उच्चारण में, बड़े मुश्किल से याद कर पाया मैंने, सालों लग गया उसको याद करने में, ना क्या ना हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। बोले महाराज ये कोई शास्त्र पुराण में है क्या, मुझे पता नहीं सुना था, सुन सुन करके बड़े मुश्किल से कंठ किया था, आपको पता है प्रामाणिक है कि नहीं, मुझे पता नहीं कोई शास्त्र सब देखने सबको तो पता है भाई, ये तो कलिसंतरण उपनिषद का है, ये उपनिषद श्लोक है उपनिषद मंत्र, हाँ उपनिषद का है, उसका अर्थ था मैं तो महामूर्ख अर्थ भी नहीं जानता, अर्थ थोड़ा बताए सही, मैं क्या मंच पर बता रहे हैं हम उनको होकर के इतने हाथ जोड़े बोलते, हजारों लोग बैठ के श्रोता सुन रहे हैं, एक तो बोल दिए जो एक शास्त्र उपनिषद का मंत्र है और उसका अर्थ पूछ रहे हैं, मूर्ख में जानता नहीं कंठ तो याद तो कर लिया उसका मतलब क्या होता है, अब मतलब कहने के लिए वो बैक स्टेप ले रहे हैं, कैसे कहें उसका मतलब, अगर कहें तो उनका धर्म सबका नाश हो जाएगा, अब तो मर गए, अभी बोलते हैं कि तू क्यों नाच गान कर रहा है, यहां बैठ के वेद पाठ करो ब्रह्म चिंतन करो, अब ये अर्थ जब उसका कर देंगे सब मर गए सारे बोल्ड आउट हो जाएंगे, अब करे क्या, सबके सामने मंच के ऊपर पूछ दिया हाथ जोड़ करके, मैं मूर्ख हूं नहीं जानता उसका अर्थ क्या है थोड़ा बता दीजिए ना, आप बोले कि तो उपनिषद मंत्र है उपनिषद वाक्य उसका मतलब है क्या, आप सब मुंह बुला करके बैठे कैसे बताएं, अगर बताएं तो मर गए तो आप क्यों नहीं कर रहे फिर, इसमें मंत्र का ही अर्थ है कि इस कलिजुग में और कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं कोई उपाय नहीं केवल हरि नाम के अलावा कुछ है, अब ये बात को प्रमाण करके मंच में बोल देंगे हजारों सुन लेंगे तो अरे मूर्ख तुम क्यों फिर ऐसा कर रहे बैठ करके ध्यान क्यों कर रहे क्यों हरि नाम नहीं कर रहे, मर जाएंगे अब तो, और नहीं कहने से मरेंगे कहने से मरेंगे, ऐसे स्थिति में डाल दिए वो बेचारे आगे ना पीछे सब पसीना उतरने लगा, हाँ ठंडी के समय में पसीना पसीना हो गया, अब करें क्या, सारे देख रहे हैं चारों तरफ सब देख रहे हैं, अब मंत्र का अर्थ करें या ना करें, नहीं करें तो बुद्धू हैं आप बड़े बड़े पंडित हैं मंत्र का अर्थ नहीं कर पाते, अब मंत्र तो प्रामाणिक आप खुद ही बताए, अब क्या करें मंत्र का अर्थ बता दूं तो फिर हम मूर्ख बनेंगे और नहीं बताओ तब मूर्ख बनेंगे, बन तो गए मूर्ख, हा क्या करें ब्रह्म को ध्यान करने लगे इष्ट चिंतन करने लगे, अब सब चारों ओर देखने लगे, गोसाई आपको जो जो प्रकाश नंदन के मुख्य थे बोले आप ही करो प्रकाश, एक मंच पर वहीं बैठे बैठे एक सेट में 10,000 शिष्य बना दिए, सारे मुड़मुड़ाए दिखे भरे नाम करने लगे, ऐसा प्रीचिंग है उनका, सिंगल सिंगल नहीं एक साथ में 10,000 चला बना दिए, जा सब हरिनाम करना पड़ा, छोटी सी वाक्य में एक मंत्र उन्हीं से कहलाया, लेकिन क्या टेक्निक, इतने हम्बल हो गए अपने आप, इतने वो झूठ भी बहुत कहे, झूठ कहना और हम्बल बोलना जो भी लगाए वो लगाओ, लेकिन उसको बटा काम निकालो अपना। भगवान ने गीता में पिचर्स के लिए एक श्लोक कहे हैं, प्रचारक के लिए क्या कहते हैं, तीसरा अध्याय का मेरा ख्याल में 27 नंबर श्लोक है ये, ना बुद्धि भेद जनयत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसयत सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार। देखिए बोलते हैं कि जो अज्ञानम और कर्म संगीनाम, हम जिसको प्रचार करने जाते हैं तो अज्ञात है और कर्मी भी है, कर्मी और अज्ञानी उन्हीं की तो प्रचार कर रहे हैं ना, तो उनको कैसे प्रचार करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ना बुद्धि भेद जनयत, उनका समझ में उनका बुद्धि में भेद मत डालिए, उन्हें कहिए कि नहीं वो जो कर रहे हैं नहीं रुको छोड़ो ये सब, ना ऐसा मत कहिए, ऐसा कहने से आपको भी छोड़ डालेंगे और कोई संस्था में चले जाएंगे, नहीं दे देंगे ना, दिस इज नॉट द वे टू टीच। सबसे बोलते हैं वो अज्ञा और कर्मियों को बुद्धि में भेद मत डालो, क्या फिर कैसे करूं प्रचार, ना जो सहित सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार, ऐसे चतुराई से काम निकालो तो बिल्कुल पट जाएंगे, पक जाएंगे, पूरे बॉयल हो जाएंगे, लेकिन ऐसे चतुराई से काम करो कि उनको बुद्धि में कोई भेद मत डालो, रोको मत उनको जो करते, हाँ 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 ऐसे चपलसी करते करते ऐसे ही पटा डालो तो बिल्कुल पक जाएंगे, छोड़ देंगे सारे, कपड़ा उतर जाएगा बाल भी उतर जाएगा, है ना, नहीं ये तरीका है। तो ये महाप्रभु के इसी को फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण भी जो कह रहे हैं महाप्रभु वही कह रहे हैं। तो इसलिए आज अपने बंधु वर्ग को बुला करके उन्होंने ऐसे बात कर रहे हैं, उनको छोड़कर अकेला जाना था तो ऐसे बात कह रहे हैं कि वो बेचारे वो कहें क्या कहें कैसे ना कहें, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो उनके इतने नजदीक निजर अपने थे, वो सुनकर के बोले ऐसा कैसे हो, देखिए ये बात जो कह लिए तो बोले सबको तो पता है ये तो झूठ बोल रहा है कि नित्या विश्वरूप तो है नहीं और आप अकेला क्यों जा रहे हैं। तो इस बात को सुन करके सुनिया सवार मने हैल महादुख, सारे बड़े दुखी हो गए, इसी के सामने छोड़ना चाहते हैं, निशब्द हैला सवारा सुकाइल मुख, सारे के मुख सूख गया, सब चुप हो गए, हमको घर से ला करके यहीं छोड़कर चला जाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु उठे, सब बोले देखिए प्रभु आप कुछ कीजिए, नित्यानंद प्रभु कहे ऐसे कैसे हाय, एकाकी जाइव तुम्हें केह आस है, ऐसा कैसे हो सकता है आप अकेले चले जाएंगे, हम कैसे सहन कर सकते हैं, हम आपके साथ में आए, हम आपको छोड़ करके हम अकेले चले जाएंगे, हम आपको छोड़ करके अकेले रह जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, दुई एक संगे चलो ना पड़ो हट्ट रंगे, जाए कह सही दुई चलो तुम्हार संगे, बोले इतना हट मत करो, ढीठ मत बनो, ठीक है सभी को मत लो, कोई एक दो को साथ में ले चलो, हम पांचों को पांच नहीं जाएंगे आपके साथ, कोई एक दो कोई तो साथ में जाएगा, ऐसे ज्यादा हट मत करो, आप ही सिलेक्ट करो, हम नहीं कहेंगे, आप सिलेक्ट कर बोल दो किसी को साथ में लेंगे, वही एक या दो साथ में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएंगे, आप बोलो, बोल करके नित्यानंद प्रभु चाहते थे खुद जाने के लिए, तो इसलिए अपना देखते हैं, बोले देखो सिलेक्ट तो आप करेंगे, हम केवल अपना क्वालिफिकेशन डालते हैं, अप्लाई हम करते हैं, सिलेक्शन आपके ऊपर है। क्या बोलते हैं, दक्षिणेरा तीर्थ पर्थ आमी सब जानी, आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा देह तुमी। देखो आप साउथ इंडिया जाना चाहते हो, आप तो कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जाना चाहते, मैं तो 20 साल पता है ना आपको, 20 साल का एक्सपीरियंस मेरा है ऑल ओवर इंडिया, साउथ तो मैं दो बार घूम चुका हूं, सारे रास्ता मुझे पता है, दक्षिणेरा तीर्थ पर्थ आमी सब जानी, सारे तीर्थ जाता का गली पेंच रास्ता किधर क्या सब मुझे पता है, तो इसलिए प्रभु आज्ञा दीजिए मैं साथ में चलूं, आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं, मैं सारे संभाल लूंगा, रहना खाना पीना सब किसी पूछना भी नहीं पड़े, सब मुझे पता है, तो पता होना आदमी को लेना चाहिए ना, तो इसलिए आप आज्ञा कीजिए मैं साथ में चलूं। तो देखिए नित्यानंद प्रभु प्रमाण भी दिए, मुझे सब रास्ता घाट पता है, एक्सपीरियंस हूं, दो दो बार मैं जा चुका हूं, सारे मुझे पता है, और कृपा करके आज्ञा दीजिए मैं आपके साथ चल पड़ूं, बाकी कोई नहीं जाए। नित्यानंद प्रभु ने प्रमाण के साथ सर्टिफिकेट प्रूफ एफिडेविट के साथ अपने दाखिल किए, नॉमिनेशन फाइल किए कि मैं जा सकता हूं और ये प्रूफ है, इसलिए मुझे जाना चाहिए आपके साथ, बिकॉज ऑफ दिस। अब महाप्रभु कैसे उनको नाकच करते हैं, देखिए कैसे एप्लीकेशन को खारिज करते हैं, प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधर, तुम्ही जैसे न चाहते छे नर्तन आमार। क्या बात बोल दी, पहले खारिज करने से पहले ये बात बोलना पड़ता है, कष्ट ना लगे। बोले देखो श्रीपाद, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु हमेशा श्रीपाद श्रीपाद कहते थे सम्मान से, उनका नाम नहीं लेते थे। बोले देखो श्रीपाद, सत्य बात तो यह है तुम नचाने वाले और मैं नाचने वाला हूं। आपने सूत्रधर आमी नर्तक, जैसे को पपेट डांस देखा ना, पपेट डांस में नाचता तो पुतली है लेकिन परिश्रम किसको होता है, पपेट को होता है क्या? जो सीन के पीछे धागा खींच रहे हैं। दूसरा अगर शो खराब हो तो दोष किसी को गाली किसी को पड़ेगा, पपड़ को कोई गाली देगा? जो पीछे उन्हीं को गाली भी पड़ेगा, बदनाम भी होगा और परिश्रम भी करेगा, वो भी शराब सामने कुछ नहीं उसको होता है, ना सुनाम है ना बदनाम है ना कोई परिश्रम है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आमी नर्तक तुम्ही सूत्र, तुम्ही जैसे नाचाओ आमी सही ना नाचे, तुम तो मालिक हो, मैं तो आपके हाथ में पपट हूं, तो आपके जैसे इच्छा से करो। और आप जो बोले कि आपको मैं साथ में लेकर जाऊं, बिल्कुल आप जैसे मेरे साथी साथ में ले जाऊं तो मेरा कार्य तो सिद्धि होगा ही होगा। नित्यानंद प्रभु खुश हो गए, शायद मुझे सिलेक्ट कर ला है शायद। बोले आपको क्यों नहीं साथ में लूंगा, क्यों ना? देखो आपको मैं साथ में लिया था ना, जब मैं संन्यास लिया था, संन्यास करिया आमी चलिलाम वृंदावन, तुम्ही आमालया आयले अद्वित भवन। बोले संन्यास जब लिया सबसे पहले आपको ही साथ में लिया था ना, और कोई नियम नहीं था ना, ना मैं साथ में था, तो मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाना चाह रहा था, मेरा ये प्रोजेक्ट था, तो मुझे आपने कहां लेकर आया है ना? नहीं तो तुझे साथ में इसीलिए लूंगा मुने, तू मुझे दक्षिणी यात्रा में जा रहा, मुझे कहां पहुंचाएगा क्या पता। जब मैं वृंदावन जा रहा था घुमा फिरा के लाकर अद्वित घर में पहुंचा दिया, ऐसे छल किया, ऐसे चीटिंग किया मेरे से, अभी मैं दक्षिण जा रहा हूं तो उत्तर के पश्चिम कहां पहुंचा क्या पता। नित्यानंद प्रभु जो आशा किए थे बिल्कुल मुरझा गए, अब तो चांस नहीं, शायद और कोई चांस थोड़ा बहुत होगा। तो फिर महाप्रभु दूसरे डोज मारे, नीला चले आशित पथे आईला मोर संगे। जब मैं शांतिपुर से पूरी आया तभी मेरा साथ में आपके लेकर, हाँ मैं आपके साथ था। आशीवार पथे भंगिला मोर दंड सभाई सवार मरे से। बोले देखो मैं सन्यासी हूं, जब सन्यास लिया सब कुछ छोड़ दिया, अकेली विधवा वृद्धा मां थी, पत्नी थी, घर संपत्ति जायदाद स्वजन परिजन सब छोड़ करके जो सन्यास ग्रहण किया, मेरा संबल एकमात्र मना दंड है, गुरु ने मैंने यही दिया था, यह दंड मात्र त्रिदंड संन्यास लिया था, यह दंड धारण करके मैं अकेला घूम रहा हूं, तो मेरे साथ में आप आया। मैं थोड़ा स्नान करने गया, जगदानंद मेरा दंड पकड़ा था, वो उनको कोई काम था आपको दे दिया, थोड़ा 5 मिनट पकड़ लो आने ले लेंगे। फिर 5 मिनट आप संभाल नहीं पाया, मेरा छोटा सा लगेज था, एक ही तो लगेज था मेरा, बाकी तो कोई था नहीं, एक ही छोटा सा 1.5 किलो भी नहीं होगा, किलो भर भी नहीं होगा, इतना हल्का लगेज था, एक दंड था, उसी को 2-5 मिनट के लिए थोड़ा पकड़ो तो आपको देकर गया, इतने तो संभाल नहीं पाया एक ही लगेज मेरा, तो उसको तोड़कर 3 घंटे फेंक दिया। क्या था ना नित्यानंद का जो थोड़ा सा आशा था बोल्ड आउट कंप्लीट, और आशा ही नहीं, अब सवाल ही नहीं जाने का, दोनों प्रूफ ऐसा दिए प्रमाण की खत्म, एप्लीकेशन खारिज। कि एक छोटा सा लगेज मेरा था तो उसको संभाल नहीं पाया तो उसे तोड़ दिया, तो आपको मैं साथ में नहीं लूंगा और किसको लूंगा। नित्यानंद बोले बिल्कुल नहीं, मैं वो समझ गया, मैं नहीं जाऊंगा, चलो मैं आउट, बाकी जो है चार उनसे समझ लीजिए, अभी मैं तो गया। बाकी जैसे ये बात कहा तो तुरंत आगे आ गए, कौन दूसरे नंबर, बोले चलो नित्यानंद नहीं जाएंगे हम तो, हमारा लाइन तो लगेगा। जगदानंद आ गए, बोले चलो मेरे सीरियल है, मैं तो ऐसा नहीं किया हूं, मैं कभी महाप्रभु ठका नहीं, मैं तो उल्टी नित्यानंद बोला क्यों दंड तूने तोड़ दिया, मैं तो रख रहा था, मुझे देखकर महाप्रभु कहते मैं उनको 2 मिनट के लिए दिया तो उड़ दिया बदमाश, तो क्या करूं, मैं तो ऐसा कभी नहीं है कि मुझे तो सिलेक्ट करेंगे, मैं तो साथ में जाऊंगा। तो जगदानंद सामने आ गए, तो हुमे जगदानंद चाहे आमी विषय भुंजाइते, जेई कहे सही भये चाहिए करिते। बोले ये जगह जगदानंद है, वो आ गया मेरे साथ में आने के लिए, तो उनको क्यों साथ में लेकर जाऊंगा, वो मेरा इतने आत्मीय है इतने मेरा मित्र मेरा भलाई चाहता है कि हमेशा चाहता है कि मैं विषय भोग करूं, हमेशा मुझे विषय भोग करने के लिए प्रेशर डालता है। अगर उसका कहने के हिसाब से उनका बात मानकर मैं विषय भोग नहीं किया तो रूठ जाएगा, तीन दिन तक बात ही नहीं करेगा। अब उनको साथ में लेकर जाऊं, पता नहीं रास्ते में कब तक दक्षिणी पहुंचू कि कहां पहुंचू, कितनी बार लड़ाई झगड़ा मेरा हो जाए, जानते नहीं। इसे क्यों बोलते हैं, समय नहीं है केवल यही बात में कहकर, बाकी किस बात तो बोलना मुश्किल होगा। जगदानंद जी महाप्रभु के निकट पार्षद हैं, वो भी सब छोड़ करके अपने घर बाड़ी जायदाद सब संबंधी छोड़ करके महाप्रभु के जब आए शांतिपुर से पूरी आ गए थे, उनके साथ में रहते थे। और जब पूरी में आके रहने लगे, अभी बात आगे आएगा, तो महाप्रभु तो कट्टर सन्यासी धर्म पालन कर रहे थे, तो जब पूरी में रहने लगे कुछ दिन में उनका अंदर कृष्ण स्मृति का विकार जब पैदा होता था, क्योंकि स्वयं राधा भाव था ना, हा कृष्ण कहकर राधा भाव में जब विकल हो रहे थे, इतने शारीरिक विकार होता, पागल के जैसा प्रलाप कर रहे थे, मुख छिल जा रहा था, शारीरिक विकार कब क्या होते थे, क्या समुद्र में कूद पड़े, कहीं रास्ता में गिर पड़े, क्या हो जाए, उफ, उसको देख कर जदानंद बोला क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बीमारी हो गया, इतने कष्ट हो रहा है। अब जा करके डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनको लेकर पेशेंट को लेकर नहीं गया, कोई तो जाएंगे नहीं, पेशेंट ऐसा है कि उनको लेकर जाए वो तो कभी राजी नहीं हो जाने के लिए। तो सारे सिम्टम्स को नोट किया, सारे लक्षण को, और गया पूरी, तो अभी तो गोपबंधु आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, वो तो पहले से कविराज थे इधर, तो जाकर कंसल्ट किए, सारे लक्षण को लेकर के, बिल्कुल निकट संबंधी था, पूरा होलसेल आइडिया उनको सब पता है, तो सारे जाकर डिटेल बताया, कंसल्ट किया बड़े कविराज से, बोले भाई कोई उपाय है, लेकिन ऐसा दवाई दो तो खाएगा नहीं, कोई एक्सटर्नल यूज वाला दो मेडिसिन, इंटरनल को भी खाएगा नहीं, तो ऐसे कोई दवाई हो बाहर से अप्लाई किया जाए और बीमारी ठीक हो जाए। तो बड़े बड़े वैद्य सब बैठ करके विचार करके देखो, बोले कि ये तो निश्चित हम डिसाइड कर लिए, ये बात विकार है, बात प्रकोप है, भयंकर बात हो गया, भयंकर बात प्रकोप, इसीलिए पागलपन हो रहा है, ऐसे उठ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पागलपन, बात विकार हो गया, प्रचंड बात विकार है, और उसको तो बड़ी सीवियर ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं वो पेशेंट नहीं आ रहे हो, खाने का तो सवाल ही छोड़ दो, इंजेक्शन से तभी जमाने था नहीं ऐसे उग्र कर्म, लेकिन कोई खा पी करके ठीक कर तो बोले नहीं खाएगा नहीं दवाई, वो तो मानेगा नहीं कभी, लेकिन कोई ऐसा एक्सटर्नल यूज मेडिसिन दो कुछ चलेगा, बोले देखो चलेगा ऐसे, लेकिन बड़े कॉस्टली पड़ेगा दवाई, उसको अगर मसाज करें पूरे शरीर में दो टाइम तीन टाइम तब भी ठीक हो जाए, बात शांत हो जाएगा। अच्छा बात प्रकोप शांत, बिल्कुल प्रकोप शांत हो जाएगा उसका, वो ठीक हो जाएंगे ना, बताओ बताओ ना, देखो भाई कष्ट नहीं पड़ेगा ना, बताओ तो सही। तो बोले देखो प्योर सैंडलवुड अल चाहिए, खंटी चंदन का तेल चाहिए, और उसमें और जड़ी बूटी हम जो लेख देते हैं, ये बड़ी कीमती जड़ी बूटी कलेक्शन करना पड़ेगा, उसको ला करके सारे पीस करके उसे मिलाना पड़ेगा, मिला करके चंदन तेल में ये तैल प्रस्तुत करना पड़ा, पका करके तैल बनाना पड़ेगा, उस तैल को तीन टाइम करो तो बहुत अच्छा, जल्दी ठीक हो जाएगा, तीन टाइम नहीं तो कम से कम सोते समय में, आप बोलते हैं कि जानबूझकर लेंगे नहीं, जब सो जाए सोते समय में मसाज करना सर्वांग में, विशेष करके सर में तालों में मसाज करना, तो बहुत जल्दी धीरे धीरे हो बात प्रकोप शांत होगा, ठीक हो जाएगा। सही में ना, हाँ बिल्कुल, इसमें से कोई निदान, तो समझ गए आ गएगा मेरे मन कर, बोले अभी तो करना है मुझे ठीक उनको, तो कैसे करूं, वो तो सन्यासी भिखारी, वो भी उनके साथ भिखारी है, कुछ तो था नहीं ट्रीटमेंट का, वो बड़े चंदन का तेल, चंदन उड़ भी इतने कष्टी है, चंदन के तेल तो बहुत कीमती है, बताए नहीं पेशेंट को, बताए नहीं कि मैं जब डॉक्टर कंसल्ट करके आया तो दवाई लेना है तो ठीक करना है, लेकिन मन में हमेशा यही चिंतन है कि प्रभु के कष्ट देख करके सहन नहीं होता, उनको कैसे मैं ठीक कर दूं, क्यों इतना दुख भोग रहे हैं, उस दुख को ठीक करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आकर के बोले प्रभु थोड़ा मेरा बहुत याद आए घर का बात, झगड़ा ना, तू घर जाएगा? नहीं तो जाऊंगा किस, ना माँ को भी देखकर आऊंगा, सची आई की भी मिलूंगा और बाकी से भक्त से मिलूंगा, बोलवा के थोड़ा आप प्रसाद फिर सब प्रसाद, फिर मैं आ जाऊंगा जाकर के, थोड़ा दिन मुझे परमिशन दीजिए, मैं नवदीप जाकर गोड़ जाकर फिर आ जाऊंगा। महापुरुष अंतर्जा में ही जो जाना थे पकड़ नहीं कहे, बोले जाना चाहे हट के, अपने में जाऊंगा, मुझे भेज दीजिए, बोले ठीक है जाओ। किस लिए जाना चाहते मालूम है ना, यहां पता चल जाएगा, इसलिए जाना चाह रहे थे कि मैं जाऊंगा घर, जो भी घर में संपत्ति बाड़ी घर जो जायदाद है सब बेच बाच करके नीलाम करके जो कुछ धन होगा वो अगर कम पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांग करके बेच बाच करके सर्वस्व लूट करके बेच करके ये मेडिसिन खरीद के लाऊंगा, चंदन के तेल खरीदूंगा, ये दवाई खरीदूंगा, तैल बनाऊंगा लेकर आऊंगा, अरे प्रभु ठीक हो जाएंगे, ये लक्ष्य था। इसीलिए बोला नहीं, जैसे प्रभु ऐसे चला, झूठ मूठ बोल करके परमिशन लेकर गया, गए चाहे पैदल महीना दिन लगा करके गए, और जाकर के सचमुच जो भी था सब कुछ लूटपोट नीलाम करके जल्दी से करना था उनको, ऐसे ग्राहक ढूंढू रेट आए तभी बेचू, नहीं नहीं उनको तो रेट से क्या मतलब है, उनको तो पड़ी है कि जल्दी दवाई लेके ठीक करना है प्रभु को, उनको सहन नहीं होता। जैसे तैसे सब खत्म करके और भी भीख भीख मांग करके दान दक्षिणा ले करके बोले कि नहीं तड़े लो, कम से कम महीना दिन के लिए लू तो कम से कम 15-20 किलो चंदन के तेल उन्होंने खरीद लिया, कितने कीमती है वो। तभी जमाने में ये प्लास्टिक फ्लास्टिक तो था ही नहीं, और कांच हुआ करता था, वो भी कांच बड़े मोटे मोटे, आजकल के जैसे फाइन ग्लास नहीं था, वो भी डर था तो कांच भी बड़ा कमती था, नहीं मिला तो एक मिट्टी के घड़ा, जिस मिट्टी पात्र में लगभग 15-20 किलो तेल आ सके तो कितने बड़ा होगा अंदाज लगा लो, इतने बड़े एक मिट्टी के घड़ा जिसमें ये प्योर सैंडलवुड ऑयल कहां से खरीद करके पता लगा करके, कभी कभी तो 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वहां से तेल, वहां से ये जड़ी, यहां से बूटी, यहां से ये द्रव्य लाना पड़े, ले ले करके उनको बड़े केयरफुली पीस पास करके बना करके तैल बिल्कुल जैसे मिला था सावधानी से बनाया, बना करके सबसे परमिशन लेके मिलना कोई थोड़ी था किससे, तो इसी के लिए गया था, उसको बना के तैयार करके अब जाने के लिए चला, सोचा कि अकेला जाना मुश्किल हो जाएगा, साथ में 5-7 लोग के ग्रुप बना करके चले। जब चले आप विश्वास नहीं करेंगे, उस मिट्टी के पात्र को इतने बड़े मिट्टी के घड़ा था, भरा था तेल, तेल पात्र था कभी झपकेगा, इतने सतर्कता से लेकर के महीना दिन 650 किलोमीटर तक पैदल में चलते चलते लेकर गए, कभी एक दिन में एक सेकंड के लिए नीचे नहीं रखे उसको, बोले नहीं साक्षात ईश्वर के सेवा में जाएगा झूठा हो जाएगा, उसका अशुचि हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, नीचे कैसे रखूंगा उसको, एक दिन भी नीचे नहीं रखने दिए घड़ा को, हमेशा धारण करते रहे ऊपर में, शुचि होकर धारण करने लगे। आप बोलेंगे कैसे, महीना दिन तक वो टॉयलेट बाथरूम नहीं किया क्या, खाया पिए सोए नहीं क्या? हाँ, इसीलिए तो ग्रुप के साथ गए। जब उनको सुबह सुबह स्नान आदि शौच आदि क्रिया में जाना होता था तो किसी भक्त को बोलते भैया थोड़ा पकड़ के रहो, घंटा धन में आ जाता हूं, उसके सर में देख रहे हो, सर में देख करके खड़ा रहता था, जाकर स्नान टान कर शौच होकर बिल्कुल पवित्र होकर आते थे, फिर सर में धारण करते, बोले आप जाओ स्नान कर फिर चलेंगे, सर में ढो ढो करके चले। रात को कभी सोएंगे तो पेड़ में बड़े जत्न से बांध करके, सिक्का बांध करके टांग कर रखते थे, बड़े अगरबत्ती पूजा करके फूल चंदन दे करके रखते थे, क्योंकि साक्षात भगवत सेवा में जाएगा, वही उसी के नीचे धरना देकर सोते थे। ऐसे ऐसे करते महीना दिन तक बड़े कष्ट से नीचे रखने ही नहीं दिए, इतने सावधानी से, इतने सतर्कता से, कोई झपके नीचे ना गिर जाए, कोई धूल फूल इधर ना गिर जाए, कहीं कोई धूल झड़ आया, बिल्कुल गोद में ऐसे चादर ढांक करके, कपड़ा तो था नहीं, एक ही कपड़ा पहनते थे, वस्त्र उतार करके नंगे होकर ढांक कर रखते, कोई धूल फूल ना गिर जाए उसके अंदर, कोई असुचित ना हो जाए, अपवित्र हो जाए। महीने दिन तक चलते चलते इतने किलोमीटर इतनी सतर्कता से लेकर के आए, आकर के पुरी पहुंचे, पहुंच करके आए गंभीरा में जहां महाप्रभु रहते थे, उनके सेवक गोविंद थवल, गोविंद बेचारा जूनियर डिवोटी नया भक्त था, गोविंद हाँ पंडित जी बोली देखो स्कूल हो ये क्या है बड़े सेंटर्ड है, अरे लेकर रखो, क्या करूं ना आपके पास रखना, देखो जब प्रभु जी सो जाते हैं शाम को इसको लेना, और पाद भर तेल निकाल करके मसाज करना, थोड़ा ज्यादा सर में करना, बाकी सारे सर्वांग में कर लेना, मसाज करता ना करता इसी में करना, तेल मसाज करना डेली, बस पक्का जो आज्ञा प्रभु। बेचारे नए भक्त का यही हाल होता है, सबसे हजर हजर करने पड़ेंगे, वो भी डांटेगा और दूसरे बोलेगा नहीं करना, नहीं उसको ही मानना पड़ेगा, अब करूं क्या, वो बोल दिए करो, वो बोलते ना करो, बेचारा दोनों से गाली खाए तो ही हाल गोविंद जी का है, वो डांट कर बोल दिए, बोला यस सर, ले गया उनको लेकर के रखा, और महाप्रभु तो गए थे मंदिर में, इसी समय ला कर दिया, महाप्रभु मंदिर से आए, आकर के प्रसाद प्रखंड के जब बैठे, बोले क्या पूरा घर सेंटेड हो रहा है, क्या महामहत सुगंधी आ रहा है, क्या बात है, घर में तो कुछ नहीं है, कितना सुगंधी निकल रहा है, क्या बात है। तो गोविंद कोई बात है क्या, इतनी सुगंध कहां से आ रहा है, ना प्रभु जी वो पंडित जी ने कुछ दवाई दे गए हैं, तैल है कुछ दवाई, क्या दवाई तैल ना इसे दे गए हैं, और आप सोते समय जो मसाज करता है थोड़ा मसाज करना है, बोले मसाज करने के लिए मणि सिंह तैल दे गए, क्या हुआ मुझे, मेरे तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे कौन मसाज करेगा, कहा तैल है ना पता नहीं, तो जाकर बोलते देखे कि तो खांटी चंदन का तेल में और भी कुछ मिला हुआ है द्रव्य, इससे सेंट उसका आ रहा है कि खंड मंडल सुगंधित हो रहा, तो उसको महाप्रभु बोले गोविंद इसको मेरे से मसाज करेगा, मैं सन्यासी हूं विरक्त हूं, अब उसको मसाज करेगा, काल में मंदिर जाते समय जब रास्ता में जाऊंगा लोग बोलेंगे तो दारी सन्यासी है, ये तो सेंट पेंट लगाकर चल रहा है, भाई सन्यासी होकर सेंट लगाकर चले, ये क्या सेंट पाउडर छांट पांट करके चले, तो ये क्यों सन्यासी भाई, बोले दारी सन्यासी है तो मेरा बदनाम हो जाएगा, तो मुझे ऐसा करना चाहते हैं, ये सुगंधित तेल में कैसे लगाऊंगा, वो जो बोले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इच्छा है। तो जब विश्राम किए वो बोले कि नहीं, बोले मैं थोड़ा लगा दू, पागल बिल्कुल सुना नहीं उसको, एक ड्रप भी नहीं लाना, मुझे बदनाम कराएगा, मुझे मेरा धर्म नष्ट करेगा, डांट दिया उसको, चुपचाप आ गए, कुछ नहीं लाए फिर, बस दूसरे दिन फिर अपने जैसे चले गए जगनाथ, जब प्रभु जी आ जाएंगे तभी आएगा जगनाथ पंडित, आए गोविंद कम हियर, कैसा मसाज किया, कल ठीक से किया था ना मसाज, कितना तेल, चुप कुछ बोलता नहीं, किया तो है नहीं क्या करेगा, अरे कितना लिया था तेल पूछ रहा हूं, चुप मूर्ख पूछ रहा हूं तुझे, बता दे क्यों नहीं, ना पंडित जी वह तो मना कर, क्या तू तेल मलास मसाज नहीं किया, वो डांट दिए मुझे, बोले मैं सन्यासी हूं मेरा धर्म नष्ट होगा, मैं नहीं लगाऊंगा ऐसे तेल को, पागल तुझे बोल कर गया था तू, मेरा नाम नहीं बताया, मेरा नाम बताना, केवल देकर गए हैं आपसे मसाज करने के लिए, बताया तो था ना, फिर ना फिर भी मुझे डांट दिया, बोले नहीं मैं क्या दारी सन्यासी हूं, मैं सेंट लगाऊंगा, देखो यही सब बात नहीं चलेगा, कड़ा करके मेरे नाम मतना बोलो कि मैं बिल्कुल गया हूं, आज कैसे भी लगाना, जैसे आप कहते हैं आज प्रयास करूंगा, डांट करके चले गए। तो आज फिर महाप्रभु आप विश्राम किए, तो बेचारा क्या करे, एक पात्र में थोड़ा निकाल कर लेकर आया, बैठ गया, महाप्रभु बोले ये सेंट क्या ना, आज बहुत डांट पड़ा मुझसे, आज तो थोड़ा लगा लेता हूं, गोविंद तू मूर्ख पागल हो गया क्या, कैसे मेरे से लगाएगा तेल, फिर सुगंध तेल ना, दवाई है ना दवाई है, मेरा क्या है कि दवाई क्यों लगाऊंगा ना। उन्होंने पंडित जी बहुत डांट रहे हैं, बहुत परिश्रम करके बड़े मेहनत से सावधानी से ढो ढोकर लाए हैं इतने ना, मैं समझ रहा हूं उनके बड़े परिश्रम बड़े स्नेह है इसलिए लेकर आए, तो उनको बताना मेरा बात, उनको बता देना, क्या बताऊं ना, बोलना कि प्रभु जी ने बोले कि आप इतने परिश्रम करके इतने कीमत चुका करके जो लाए हैं तो ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहिए, आपके श्रम भी सार्थक हो जाएगा ना, कैसे ना, ठाकुर जी के जगन्नाथ जी के मंदिर में अखंड दीप जल रहा है, जो अखंड तैल दीप जल रहा है तो उसी में हम देखते, मैं बात कर लूंगा, मेरे परिचित है लोगों में, टेम्पल कमांडर बोल दूंगा, पढ़ियार क्यों ले लेगा, आप पहले एक्सेप्ट कर लेगा और डाल देगा, दीप में डाल देगा तो आपका जगन्नाथ जी के दीप अखंड दीप में तेल चल जाएगा, तो प्रभु जी की सेवा ठाकुर जी की सेवा में लगे आपका भी काम समसार्थक हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे युक्त देख बोल दिए, तो बोला ठीक है मैं कल बोलूंगा। दूसरे दिन जगदानंद आए, जैसे महाप्रभु गए थे मंदिर में, गोविंद नीचे करके आया, कल मैसेज किया था दिया तो, अरे तुमने आज भी नहीं किया था, तो मेरा नाम नहीं बताता ना, बताया था तो क्या बोले ना, बोले कि पंडित जी की बोलना लेकिन प्रेम से बोलना बोलना कि आपने इतने कष्ट करके इतने कीमती चीज लेकर आया तो देखो मेरे लायक तो है नहीं, तो ठाकुर जी के लायक है, ठाकुर जी के सेवा में लगा देंगे वो आपके श्रम सार्थक हो जाएगा, और क्या सेवा ठाकुर जी के लेंगे ना, बोलते हैं जो जगन्नाथ मंदिर में अखंड दीप है वो टेम्पल कमांडर से बात कर लेंगे, उनका परिचय है और वो आपके तेल वहीं दे देंगे डोनेशन, और लेकर के ठाकुर जी के दीप में जले जाएगा तो समझ। अच्छा ऐसे बोले, देखो मैं फाइनल बता रहा हूं और मैं नहीं सुनने वाला हूं, आज बता देना, डांट करके बोलो ये सब नहीं चलेगा, आपको लगाना है और आज लगाना। तीसरा दिन गोविंद बोला कि इतना डांट पड़ रहा है कुछ तो लगा दो, लेकर आया महाप्रभु, फिर खूब डांटे उसको, बोला मैं क्या करूं, ये इधर धक्का मार रहा है इधर धक्का मार रहा है, मैं जाऊं कहां। महाप्रभु क्यों इतना तकलीफ ना, मैं उनको बोला ना, बोला नहीं मैं आपके बात बोला, तुझे बोलना नहीं आता, थोड़ा नम्र होकर बोलना चाहिए था ना, इतने नम्र होकर के बोलो ताकि गुस्सा ना करें, तो समझा दो उनको, बोलो आपको लेना नहीं पड़ेगा, मैं खुद लेकर मंदिर में दे दूंगा, आपको तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मैं दे देंगे और ठाकुर जी के समय लग जाएगा, इसे प्यार से प्रेम से समझाओ मंदिर में, आप लेकर चलो मैं कल बात करता हूं दिला देंगे, ये घर क्यों मेरा सेंट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सेंटेड हाउस में रहने के लिए। तो बोला ठीक है बता दूंगा। दूसरे दिन जब दोपहर में जगह आनंद आए तो डांटे तो उनको ही बताए, बोले क्या ना, बोले कि आपको तकलीफ नहीं पड़ेगा, कल लोग वहां पर जाएंगे, मैं उनके साथ खुद ले जाऊंगा, और वो बातचीत ऑलरेडी कर रखे हैं और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ले लेंगे वो ठाकुर जी की सेवा में दीप में जल जाएगा, ऐसा वो नहीं लगाएंगे, वो तो सेंट हो रहा है घर में भी, उनको अच्छा नहीं लग रहा रहने के लिए। अच्छा तीन दिन सही से बोल रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे थे, नहीं लगा रहे नहीं लगा रहे, तो मेरा नाम बोला तो मैं आपके नाम बराबर बोल रहा हूं, मेरा क्या है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको बोल नहीं रहे, मैं आपको आप गुस्सा मत होइए, मुझे भी डांट रहे हैं, मुझे आपको थोड़ा नम्र होकर बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं नम्र होकर बोल रहा हूं, फिर भी क्यों गर्म हो रहे, मैं नरम हो रहा हूं आप गर्म क्यों हो रहे। अच्छा नरम गर्म की बात कह रहा है, नहीं ठीक है साइड हो जा, साइड हो जा, क्या करेंगे चल बाहर, वो भी सारा डर के मेरे साइड हो गया, पैर कचारते धुम धुम करके चले गए अंदर, जा करके जहां वो तैल पात्र रखा हुआ था प्रभु, इसको पूरा मटका उठा कर लाए, उठा के ला के आंगन में दुम कचाड़ दिए, मिट्टी का पात्र धड़ाश तोड़ गया, सारे तेल महामकर बह गया नाला में, पर नाला में पूरा सारे घर सारे तेल महामकम पर, पैर कचाड़ते दुम दुम होकर ये करके चला गया, जा करके गंभीरा से डेढ़ दो किलोमीटर वो स्वर्गद्वार की ओर, वहां उनका उनका कुटिया था, जा करके उनके भी कई शिष्य थे इसी मंडली में रहते थे, पंडित जी सीधा गए पैर के साथ घर में जाकर घुस गए, कबाड़ बंद कर धड़ास कबाड़ बंद करके अंदर बैठे, उनके शिष्य लोग बोलते हैं गुरु जी का क्या हो गया आज बड़े टेम्पर है, अब क्या पता नहीं क्या हुआ तो आज जल्दी से आ गए, आकर कबाड़ बंद कर अंदर बैठ गए, छोटा सा कमरा था एक कबाड़ था बंद करके अंदर से बैठ गए, और किसी का साहस नहीं बुलाएंगे, बोले चलो कब तक हम तो हमें बुलाएंगे। अब महाप्रभु जब मंदिर दर्शन करके आए, वो तो आधा किलोमीटर से सेंट आ रहा है क्योंकि पूरा फैला हुआ, क्या हो गया आज तो सेंट बिल्कुल कंपमान हो रहा है, आकर के देखे और क्या पूरा आंगन बह रहा है तेल ही तेले, चारों तरफ गोविंद बेचारा सारे कपड़ा लटा सारे सफाई में लगा है, क्या करे 20 लीटर चंदन कोई तेल कोई बह जाए तो क्या मामूली बात है छोटा सा घर के आंगन में, अब तो महीना दिन तक सेंट होते रहेगा जाएगा काम तो छोड़ेगा नहीं। महाप्रभु तो बड़े बोले क्या इसे कैसे हो गया, क्या हो गया गोविंद ना, क्या हो गया आप सब जानते हो क्या हो गया, तो बोला नहीं था मैं, बोला मैं बहुत नरम होकर बोला वो ऐसे गर्म होने लगे ना, फिर मैं जैसे समझा दिया कि बोले प्रभु जी ने बोले वो काल मंदिर में लेके दे देंगे, तो सीधा मुझे डांट करके घुस गए जबरदस्ती जाके उठाकर पटका दिए, पटका करके चले गए, अब कहां गए क्या करना कहां गए ना ये थोड़ी पता, मैं तो सफाई में लगा हूं वो मुझे पता नहीं ना, जल्दी सफाई वफाई करो क्या करो, अच्छा चला गया। महाप्रभु थोड़ा गंभीर हो गए, गंभीर होकर जाकर बैठे गंभीरा में बैठे, आप जो अपना कृत्य के शाम को बाकी भक्त लोग जो आते हैं सब आए, आकर के सभी का मुख से एक बात, पंडित जी बड़े रूठ गए, सुबह से गए अभी तक बाहर निकल रहे नहीं, खाना पीना से दूर बात बाहर भी नहीं निकल रहे, क्या हो गया कुछ तो उनका समझा दो ना, मैं क्या करूं, वो मुझे जबरदस्ती धर्म तोड़ना चाहता है, मेरे से सेंट लगाना चाहता है, मैं मना कर दिया, इतने मैं क्या कर सकता हूं ना, कुछ तो करो ना, मान जाएगा और क्या। आज तो दिन है कल, एक दिन बीत गया, मैंने पूरा 24 आवर्स पास कर गया, कबाट नहीं खोला। दूसरे दिन उनके शिष्य लोग सुबह जाते थे दरवाजा के सामने, साहस नहीं होता था, फिर भी आवाज करते थे, कबाट ठकठक ना करते थे, कुछ भी हूं कि चूं आवाज अंदर से नहीं आता था। उस दिन भी बीत गया, दूसरा दिन भी बीता, दूसरा रात भी गया, दूसरे लोग परेशानी, अरे कम से कम खाएगा नहीं, कम से टट्टी पिशाब के लिए तो बाहर निकले, छोटा सा कमरा कबाट बंद कर पड़ गया। 48 घंटा बीत गया, बाहर नहीं आए। तीसरा दिन सुबह सारे लोग परेशानी, एक से क्या हो गया, ना खाना ना पीना ना बाहर निकलना, बाहर निकल नहीं रहा है। तीसरा दिन सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, कितने ला करके दरवाजा के सामने कीर्तन किए बैठे, कोई नहीं, शब्द निशब्द बैठे। 72 आवर्स पास कर गया, 3 दिन 3 रात बीत गया। सारे भक्त लोग आकर रो रो कर प्रभु जी के साथ बोले, मर गए कि पंडित जी, अब आप कुछ कीजिए प्रभु जी, अब निकल ले रहे, पता नहीं कोई शब्द भी नहीं आ रहा है, पता नहीं उनके शिष्य गण भी खाना पीना छोड़ दिया, अभी आप कुछ कीजिए, कोई बात है देखेंगे देखेंगे। चौथा दिन को महाप्रभु का नित्य प्रति नियम था, गंभीरा से उठ करके सुबह सुबह मंदिर जाते थे। गंभीरा आप देखें होंगे, पूरी में बीच में है, इधर से जाने से समुद्र की ओर जगन्नाथ पंडित के निवास आएगा, उस तरफ जाने से मंदिर आएगा, विपरीत दिशा पर हमेशा जाते थे, कभी उधर नहीं जाते थे। आज नियम बदल गया प्रभु का, आज सुबह उठ करके मंदिर में बाल भोग दर्शन न जा करके बदला दिया नियम, उस दिशा पर चलने की। सब बोलते हैं आज इस दिशा पर, इस समय प्रभु इस दिशा पर कैसे जा रहे हैं, पता नहीं आश्चर्य बात है, गए उधर। कोई पूछा महाप्रभु मंदिर, मंदिर जाऊंगा थोड़ा, इस रूट में जा रहा हूं आज, क्यों जा रहे पता नहीं, गए सीधा गए स्वर्गद्वार के पास में, जहां जगदानंद का कुटिया था, सारे भक्त लोग बैठे हुए थे, सब गंभीर मुद्रा, कोई रोज से मुंह लटका कर बैठे थे। चौथा दिन हो गया, बाहर निकल नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ अंदर सुसा, जाकर के महाप्रभु दरवाजे के पास खड़े हो गए, सब देख रहे शायद कुछ करेंगे, बुलाएंगे कुछ करेंगे, बड़े भद्रभाव से जेंटिल नक ऐसे ऐसे दो बार किए। अरे जो इतने खोल करताल कीर्तन क्या क्या के नहीं आवाज दे रहा है, तो इसने ठुक ठक कर रहा है, समझ लगे। देखिए प्रभु जानता है भक्त का गुण, भक्त जानता है प्रभु के गुण, इसी प्रकार भद्र भाव से करना, केवल प्रभु के व्यतिरिक्त इतना भद्रता, इतना शालीनता किसी के पास हो सकता है, ये शालीनता का केवल अधिकारी तो वही है। इतने भद्र भाव से जेंटिल ना किया दो बार, वो भी समझ गया अंदर में कि ये जो नकिंग और किसी का नहीं हो सकता, ये तो हमारे प्राणनाथ का ही हो सकता है। कुछ नहीं आवाज हुआ, दो बार नक करने के बाद जगा, वो जगा बड़े प्रेम से, जगदानंद पंडित नाम है, लेकिन जिस जदी ज्यादा प्रेम उमड़ता है ना, जैसे कोई मां अपने नजदीक छोटा बेटा को बुलाता है, बेकार नाम को कालिंदी को कालिया ऐसे बोलेगा, है ना, ये ज्यादा प्रेम होता है, जब ऐसे पुट चढ़ जाता है सो गड़बड़ हो जाता है नाम में, तो ऐसे ही जगा, ओ जगा, दो बार कहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फिर बोले कि देखो मैं मंदिर जा रहा हूं आज इस तरफ से घूम करके, और आज तो मैं प्रसाद नहीं लाऊंगा मंदिर से, आज तो मेरा इच्छा है कि जगह बनाए मैं आज खाऊं, आपके हाथ का रोसे में खाने का बड़ा इच्छा है, अब मैं जा रहा हूं, बस कहकर चल पड़े। वही बाहर में इतना कह करके चल पड़े, बस सीधा मंदिर चले गए बेरोक टोक। सारे भक्त लोग बैठे थे, देख रहे थे आश्चर्य क्या चल रहा है, धीरे धीरे इसे दो बार किए, वो बहुत स्लो आवाज में इतना केवल बोल दिए कि जगा, वो जगा, अब आज मैं मंदिर जा रहा हूं, आज मैं मंदिर के प्रसाद नहीं खाऊंगा, आज तो मेरी इच्छा है आपके हाथ के खाने के लिए, तो मैं जा रहा हूं, बस कह करके 4 पाउंड आगे नहीं गए महाप्रभु, 4 कदम धड़ास से दरवाजा खोला, धाम करके खोला, खोल करके ये इतना जोश से निकला, जो सब 20-25 भक्त बैठे, चलो जाओ तुम ये लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, 20 को काम में लगा दिया, अकेला दौड़ करके आया गंभीरा में, और तभी तो गैस चूल्हा था नहीं, अकेला लकड़ी के चूल्हा में लगा करके बीसों चूल्हा में अकेले कुकिंग करने लगा। बीसों को बोला तुम साग लेकर आओ, तुम ये सब्जी लेकर आओ, तुम ये लेकर आओ, वो लेकर आते हैं और 10-20 को लगा दिया काट, अकेले जैसे कोई 100 हाथ हो जाए उनका, 100 हाथ हो जाए, 100 आदमी मिलकर के इतना कुकिंग नहीं कर पाएंगे इतना जल्दी। वो गए प्रभु जी आने से पहले 36 व्यंजन तैयार, एक से ये है गया। अभी तक अब 82 आवर्स तक उन्होंने भोजन नहीं किए, सोए नहीं, खाए नहीं, नहाए नहीं, कुछ नहीं किए, प्रभु की सेवा के लिए इतने तलब है। कहां से इतना शक्ति आया, कहां से इतना जोश आया, ऐसे किए कि लोग सुचकित होकर देख रहे हैं। वो तो पसीना पसीना उतर रहे, 20 लोगों का उतर, लेकिन अकेले कर रहे हैं धमाका, विद्युत की तरह यहां जा रहे, यहां जा रहे, यहां जा रहे, ये पकाओ, ये उठाओ, ये रखो, ये उतारो, फिर नगो, क्या क्या कर रहे हैं। और एक भी आइटम लक्ष्मी फेल मार जाएंगे, कोई गड़बड़ हो जाए इसे नहीं होगा, एक से एक बढ़ करके बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग करके रख दिए महाप्रभु। उनको पता था, उनको विश्वास था चैतन्य महाप्रभु को कि इतने डोज ही काम कर जाएगा, केवल दो ही बात सिंपली बोल दी, इतना डोज काम कर ही जाएगा, वो भोजन बन के तैयार मिलेगा मुझे, इनका विश्वास था और हुआ ही हुई। आकर देखे तो बिल्कुल तैयार, बड़े पत्ता डालकर बड़े प्रेम से आ जाने थे, बैठे प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ, खुद परिवेषण करने लग गया। अभी अब बोले मैं ही परिवेषण करूंगा, अब ला करके महाप्रभु जितने खाते थे उसका 20 गुना डाल दिया, बनाए सारे पूरे मटका डालने लगा आकर। महाप्रभु खाने से पहले देखे तो हो गया, हो गया, बस बस मत दो, ऊपर देखते कौन परोसा जगह, चुप हो गया, पेट हो गया, फिर खाने बोल नहीं सकते, ऊपर देखते थे जगदानंद है, सीधा खा गए और नॉन स्टॉप खा जाएंगे, बस वही आइटम हो गया, अरे लाओ डालो, क्यों दे रहा है ना पंडित जी, पंडित जी अच्छा खा, चुपचाप खा जाते हैं, आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जब तक पंडित जी देख रहे हैं तब तक नो, अब पेट जाए चाहे पेट फाटे, अब तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 3 दिन का उपवास ना कर बैठे, डर के मारे सब खा जा रहे हैं। अंत में बोले बस कब क्या करूं, अब कब तक खिलाएगा, हो गया बहुत हो गया, अब कब तक खिलाएगा आप, बोला ठीक है ठीक है, और जो छोड़ दो वही छोड़ दो, मैं खा लूंगा, अब जाओ ना, हाँ जाओ। तो महाप्रभु तब परमिशन लेकर उठे, हाथ धोए, बोले हाथ धोकर आलू, बोले देखो तू इतना दिन से नहीं खाया, मैं ही बैठा रहूंगा तो जब तक नहीं खाएगा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं से कैसे होगा, आप जाओ खाने के बाद, ए गोविंद जाओ थोड़ा पद सम्मान कर जाओ, तांबूल दो उनका, ऐसे कैसे होगा, नहीं तुम नहीं खाया रूठ के बैठा, आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सामने तो खाओ, मैं जाओ ना, मैं खाऊंगा ना, मैं रख लिया ना आपके बर्तन, मैं बर्तन रख दिया, मैं खाऊंगा सबको खिलाकर, ये बहुत काम किए, इतने लोग लगे परिश्रम किए, उनको पहले खिला दूंगा, अच्छा आप परिश्रम ना, मैं तो थोड़ा हाथ हिलाया, ऐसे परिश्रम किए उनको खिलाता हूं, माना नहीं, जबरदस्ती कर महापुर को सुलाने के लिए भेज दिया, गोविंद को ला जाओ सेवा करो, सबको बैठा कर खिलाया, सबको खुद परिभूषण के विश्वास खिला करके लास्ट में जो बचा कुचा उसी को पतल चाट करके खाया। गोविंद को महापुर बोले जाकर देख कर आओ खाए कि नहीं, ना वो अभी खा रहे हैं। तो ये हाल महाप्रभु का हुआ था एक बार, तो इसीलिए कहते हैं कि जगदानंद तो मुझे विषय भोजन भोग कराना चाहता है, और उसी को साथ में नहीं लूंगा तो और किसी को लूंगा, बाय चांस ऐसा हो जाए कोई मैं नहीं चाहूंगा इसे करने के लिए, वो बोलेगा करो, अगर नहीं करूं तब तो आम के पार्टनर ही गया, अब उन्हीं को उठाने के लिए मेरे 24 घंटा 4 दिन वही लग जाएगा, दक्षिण क्या जाऊंगा, अभी आपके समय हो चुका है एक में, अब बाकी 3 बाकी रह गए, सभी को कैसे महाप्रभु प्रेम से रोकेंगे, बड़े समझने का बात है, यही है भक्तों के व्यवहार। हरे कृष्ण निताय गौर हरि कुमानंदी।